बिजनेस काउंसिल की मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी चीफ एग्जीक्यूटिव का कहना है कि बीजिंग में आयोजित 8वां ऑस्ट्रेलिया चाइना सीईओ राउंड टेबल दो तरफा आर्थिक विकास को आगे बढ़ाने का एक अहम मौका है। प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीजी और प्रीमियर ली शियांग इस राउंड टेबल में हिस्सा ले रहे हैं, जिसमें दोनों देशों के वरिष्ठ उद्योगपति भी शामिल हैं। ये पहली बार है जब ये फोरम 2016 के बाद फिर से बीजिंग में हो रहा है। ये ऐसे समय में आयोजित किया जा रहा है जब चाइना और ऑस्ट्रेलिया के व्यापार समझौते को 10 साल पूरे हो चुके हैं। बिजनेस काउंसिल ऑफ ऑस्ट्रेलिया के सीईओ ब्रायन ब्लैक का कहना है कि ये बैठक विकास के नए क्षेत्रों की पहचान करने का एक महत्वपूर्ण अवसर है। विशेषज्ञ युवाओं और जिन माता पिता के छोटे बच्चे हैं, उन्हें मेनिंगोकोकल बीमारी के शुरुआती लक्षणों के प्रति सतर्क रहने की चेतावनी दे रहे हैं, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में इस बीमारी का पीक सीजन शुरू हो चुका है। ये बैक्टीरियल संक्रमण बिना किसी चेतावनी के अचानक हो सकता है और तेजी से बढ़कर जीवन बदलने वाली जटिलताएं पैदा कर सकता है। लक्षणों में बुखार, सरदर्द, गर्दन का अकड़ना और लाल या बैंगनी धब्बे या चोटें शामिल हैं, जो दबाने पर भी नहीं मिटतीं। डॉक्टरों के अनुसार इस साल अब तक 56 मामले दर्ज हो चुके हैं, जिनमें से 18 न्यू साउथ वेल्स में हैं, जिसके कारण इस बीमारी के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय अभियान शुरू किया गया है। रिजर्व बैंक की एक समीक्षा में सुझाव दिया गया है कि ऑस्ट्रेलिया में डेबिट और क्रेडिट कार्ड लेनदेन पर लगने वाले सरचार्जेस को खत्म कर दिया जाए। इस कदम से उपभोक्ताओं और व्यवसायों को हर साल लगभग $1.2 बिलियन की बचत हो सकती है। सेंट्रल बैंक ने एफपॉस, मास्टर कार्ड और वीज़ा कार्ड से लेनदेन पर लगने वाले शुल्कों को गैर ज़रूरी बताते हुए इन्हें ख़त्म करने की सिफारिश की है, क्योंकि इनसे उपभोक्ताओं को भुगतान का तरीका चुनने में कोई ख़ास मदद नहीं मिलती। समीक्षा में ये भी कहा गया है कि इंटरचेंज फीस की अधिकतम सीमा को भी कम किया जाना चाहिए। ये वो शुल्क है जो किसी लेनदेन के समय व्यवसाय ग्राहक के कार्ड देने वाले बैंक को देता है। ये सभी बदलाव रिजर्व बैंक के मौजूदा अधिकार क्षेत्र में आते हैं और इन्हें लागू करने के लिए किसी नए कानून की ज़रूरत नहीं होगी। इन बदलावों की शुरुआत जुलाई 2026 से होगी, जिससे पहले सुझाव और प्रतिक्रिया लेने की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। एक नई स्टडी में पाया गया है कि ऑस्ट्रेलिया में एक तिहाई से ज़्यादा युवा कर्मचारियों को उनके नियोक्ता पूरी तनख्वाह नहीं दे रहे हैं। मेलबर्न लॉ स्कूल द्वारा किए गए इस सर्वे में 30 साल से कम उम्र के 2,814 कर्मचारियों से बात की गई, जिसमें न्यूनतम वेतन से कम भुगतान के कई मामले सामने आए। हर 3 में से 1 कर्मचारी को $24.95 के न्यूनतम वेतन से कम भुगतान मिला, जबकि हर 4 में से 1 को सुपर एनुएशन नहीं मिला। हर 5 में से 1 ने बताया कि उन्हें ऑफ द बुक्स भुगतान किया गया। लगभग 10% को पैसे की जगह खाना या प्रोडक्ट्स दिए गए और 8% को कभी भी वेतन पर्ची यानी पे स्लिप नहीं दी गई। हालांकि सिर्फ 1/3 ने ही यूनियन या फेयर वर्क ओम्बड्समैन जैसी संस्थाओं से मदद लेने की कोशिश की। स्टडी के प्रमुख लेखक प्रोफेसर जॉन हो का कहना है कि इस तरह की गड़बड़ियों से निपटने के लिए नियमों को मजबूत करने और कर्मचारियों को उनके अधिकारों के बारे में जागरूक करने के लिए अधिक संसाधनों की ज़रूरत है। यूक्रेन में जारी संघर्ष के चलते रशिया के खिलाफ नए कदम उठाने पर यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का धन्यवाद किया है। व्हाइट हाउस लौटने के बाद पहली बार डोनाल्ड ट्रंप ने यूक्रेन को नई हथियारों की आपूर्ति का वादा किया है। नई डील के तहत अमेरिका नाटो सदस्यों को हथियार बेचेगा, जैसे पेट्रियट एंटी एयरक्राफ्ट बैटरीज और इंटरसेप्टर मिसाइल्स, जो फिर आगे इन्हें यूक्रेन को देंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने चेतावनी दी है कि अगर व्लादिमीर पुतिन अगले 50 दिनों में युद्ध विराम समझौते पर सहमत नहीं होते तो रशिया पर भारी टैरिफ लगाए जाएंगे। व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा कि यूक्रेन के लोग डोनाल्ड ट्रंप के इस कदम के लिए आभारी हैं। और अब खबर भारत से। 114 वर्षीय प्रसिद्ध मैराथन रनर फौजा सिंह का 14 जुलाई 2025 को पंजाब में एक सड़क दुर्घटना में निधन हो गया। अपनी फिटनेस और आत्मबल के लिए जाने जाने वाले फौजा सिंह को दुनिया भर में टर्बन टोर्नाडो के नाम से पहचाना जाता था। रिपोर्ट्स के अनुसार दुर्घटना उस समय हुई जब वो सड़क पार कर रहे थे और एक वाहन ने उन्हें टक्कर मार दी। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। पंजाब के राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित ने उनके निधन पर शोक जताते हुए कहा कि फौजा सिंह केवल खेल जगत के ही नहीं बल्कि समाज के लिए भी प्रेरणा का स्रोत थे। ये था आज का न्यूज फ्लैश नबील हसन के साथ।
हमसे जुड़िए जब आप चाहें SBS हिंदी पॉडकास्ट कलेक्शन, SBS ऑडियो ऐप, SBS साउथ एशियन के यूट्यूब चैनल या फिर थर्ड पार्टी पॉडकास्टिंग प्लेटफॉर्म जैसे Spotify पर। आप हमें लाइव सुन सकते हैं हर शाम 5 बजे डिजिटल रेडियो टीवी चैनल 305 SBS ऑन डिमांड या फिर हमारी वेबसाइट पर भी।